रात में अन्वय अंतरा के साथ रुका था। अगले दिन कानपुर से लेकर दिल्ली तक की सभी रिश्तेदार अंतरा से मिलने आए थे। सारा दिन अस्पताल में लोगों का मेला लगा रहा। कानपुर से शुक्ला परिवार और दिल्ली से उनके मामा अपने परिवार सहित आए थे। आहाना अपने दुख को छिपाकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय ने ऐसी चुप्पी साध ली थी मानो उस चुप्पी के टूटने पर तूफान आ जाए। देखते देखते 6 दिन गुजर गए। अंतरा को 2 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया था। इन दिनों जयंती जी 24 घंटे अस्पताल में उसके साथ रही थी। बाकी सब भी जाते आते रहते थे। आहाना घर की सारी जिम्मेदारी, सबके खाने पीने का इंतजाम देख रही थी और अस्पताल भी जाती रहती थी। ये दिन सबके लिए बहुत व्यस्त रहे और बीती दर्द भरी कड़वी बातों को भुलाकर सब इस खुशी में शरीक हो रहे थे। रूपाली जी भी अपने पोते पर खूब प्यार लुटाती थी, पर अंतरा के मन से वे पूरी तरह से उतर चुकी थी। वे अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। आज बच्चे की छठी थी। घर में छोटी सी पूजा रखी गई थी जिसके साथ ही बच्चे का नामकरण भी होना था। साथ ही बच्चे के जन्म की खुशी में दावत भी रखी गई थी। मेट की मदद से फलक के साथ मिलकर आहाना ने ही सारी तैयारियां की थीं। अक्षय खाने पीने के इंतजाम में लगा था जो बाहर लॉन में किया जा रहा था। घर मेहमानों से भरा था। आहाना की पूरी फैमिली आई हुई थी। अन्वय और अंतरा अपने बेटे के साथ पूजा में बैठे थे। फलक ने बुआ का फर्ज निभाते हुए बच्चे का नाम अयान रखा था। वैसे तो सब उसे प्यार से अलग अलग नाम से पुकारते थे, पर ये नाम आधिकारिक था जो सबको पसंद आया। पूजा और नामकरण संस्कार के बाद बच्चे को सबका आशीर्वाद दिलाया गया। अंदर का काम खत्म हुआ तो आदमी लोग बाहर चले गए। आहाना ने अंतरा को अयान देकर सोफे पर बिठा दिया, क्योंकि जमीन पर बैठने में उसे अभी तकलीफ होती थी। अब भी सब बच्चे से मिलने, उसे प्यार करने के लिए लाइन में लगे थे। आहाना घर आए मेहमानों के चाय पानी मिठाइयों का इंतजाम कर रही थी, जब उसके कानों में रूपाली जी के कहे शब्द पड़े। अब तक तो इस घर में बस मनहूसियत ही फैली थी। बहू के कदम हमारे लिए अशुभ साबित हुए और घर की सुख शांति के साथ सारी खुशियां भी छिन गई। छोटी बहू ने घर में कदम रखा, तब कहीं जाकर घर में खुशियों ने प्रवेश किया। और अब सालों के इंतजार के बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी हैं। हमें अपनी अगली पीढ़ी का मुंह देखना नसीब हुआ। शायद वो किसी से बात कर रही थी। बात क्या करना, अब भी आहाना की बुराई करके अपने अहम को संतुष्ट कर रही थी। आहाना के कदम पल भर के लिए ठिठके, दिल में एक टीस सी उठी, मुस्कुराते लब से मिट गए। चेहरे पर अजीब सी उदासी और दर्द ने जगह बना ली, आंखों में नमी उतर आई। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसने किसी तरफ खुद को संभाला और कदम आगे बढ़ाए ही थे कि एकाएक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर पर इतना दबाव पड़ा कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। पैर कालीन में उलझ गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई। हाथ में पकड़ी मिठाई की थाली हाथ से छूट गई और तेज आवाज के साथ थाली फर्श से जा टकराई। सारी मिठाई बिखर गई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अगले ही पल घबराहट के मारे कईयों की चीख निकल गई और आहाना अपने होश खोकर फर्श पर जा गिरी। इस दौरान उसका सर टेबल के छोर से जा टकराया और वो सफेद मार्बल सुर्ख रंग में रंगने लगा। लोगों की चीख सुनकर अयान डर कर रोने लगा। पल्लवी, फलक, जयंती जी समेत कुछ अन्य महिलाएं आहाना की ओर दौड़ी। बेचारी अंतरा अपने बेटे और जीजी के बीच फंस गई थी। आहाना के सर से खून बहते देखकर उसकी आंखें छलक आईं और वो रोते हुए अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करने लगी। लाख कोशिशों के बाद आहाना को होश नहीं आ रहा था। जयंती जी अपने आंचल से उसके सर को दबाते हुए खून रोकने की कोशिश कर रही थी। फलक घबराहट में बाहर की ओर दौड़ी, क्योंकि आहाना का खून नहीं रुक रहा था। जैसे ही बाहर ये खबर पहुंची, अक्षय सब काम छोड़कर बधावासा अंदर को दौड़ा और बिना एक मिनट का वक्त बर्बाद किए आहाना को अपनी बाहों में उठाए बाहर की ओर दौड़ गया। पल्लवी, जयंती जी, त्रिशांत और जयेश जी उसके साथ गए थे, जबकि अन्वय को उसने अंतरा को संभालने को कहा था। गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ते हुए अस्पताल के बाहर पहुंची और आहाना को आनन फानन में इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। अक्षय के सफेद शर्ट पर जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। जयंती जी का आंचल खून से सना था और सब परेशान से बाहर खड़े थे। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर के बाहर निकलते ही चारों उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ, ठीक तो है वो? अक्षय ने बेचैन निगाहों से उन्हें देखते हुए व्याकुलता से सवाल किया। डॉक्टर ने उन चारों के परेशान चेहरों को देखा, फिर शांत सौम्य स्वर में गंभीरता से जवाब दिया। सर पर जख्म गहरा था, जिसके कारण खून भी ज्यादा निकला है। शरीर में कमजोरी आ गई है। सर के जख्म पर टांके लगे हैं और उनका बीपी बहुत हाई है। शायद किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उन्हें, और उनके बेहोशी की वजह भी शायद यही रही होगी। फिलहाल हमने ड्रेसिंग कर दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, पर उन्हें होश में आने में कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। जब डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तब जाकर सबके परेशान चेहरों पर राहत के भाव उभरे थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अक्षय ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। डॉक्टर ने पल भर ठहरने के बाद गंभीर स्वर में अक्षय से सवाल किया, मिस्टर सहगल, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी वाइफ को लास्ट पीरियड्स कब हुए थे? डॉक्टर का ये सवाल सुनकर सभी चौंक गए। अक्षय के चेहरे पर भी उलझन के भाव उभरे थे। लगभग 2 महीने पहले। असल में उनका 3 साल पहले मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद से पीरियड्स कभी कभी बीच में स्किप हो जाते हैं। पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हमने उनका ब्लड टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट के इंतजार में है। उसके बाद ही निश्चितता के साथ कुछ भी कह सकूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चौंके। साथ ही उन्हें उम्मीद किए किरण भी नजर आई कि आहाना की जिंदगी की खोई खुशियां लौट आएं। पर अक्षय अचंभित था और उसने अपनी हैरानी जाहिर भी की थी। पर डॉक्टर, हाउ इज दिस पॉसिबल? 2 दिन पहले ही हमने टेस्ट किए थे, पर टेस्ट नेगेटिव आया था, और वो भी 2 बार। अक्षय की कही बात सुनकर बाकी सब एक बार फिर चौंक गए और हैरान परेशान निगाहों से उसे देखने लगे, जबकि उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने एक बार फिर गंभीरता से जवाब दिया था। टेस्ट किट कई बार गलत रिजल्ट दिखा देती है, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं, और मैंने भी यही कहा है कि मुझे ऐसा होने की संभावना नजर आ रही है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही निश्चितता होगी। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चली गई। आहाना को इमरजेंसी वार्ड से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी जिससे पहले उसे खून चढ़ा था और अब ग्लूकोज चढ़ रहा था। अक्षय ने घर पर अन्वय को फोन करके सूचित कर दिया था कि आहाना अब ठीक है। कहा तो उसने यहाँ भी सबको था कि वो आहाना के पास रहेगा, वे घर चले जाएं, पर कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था और सब बस हाथ जोड़े भगवान से संभावना के सच होने की दुआएं मांग रहे थे। सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजने को थे। आहाना दवाइयों के असर से गहरी नींद में सोई थी और उसके स्ट्रेस लेवल को देखकर डॉक्टर ने उसके लिए जितना ज्यादा आराम वो करेगी उतना बेहतर होगा ये भी कहा था।